قوم شنطة. तो बाबा किस लिए आए हैं आज? बाबा किस लिए आए हैं आज? मुरली का सार बताने के लिए। बाबा ने कहा तो मुरलिया तो बहुत सुन ली। बाबा आए किस लिए है? मिलने के लिए कौन आता है? टीचर मिलने के लिए आता है या साजन मिलने के लिए आता है? तो बाबा किस रूप में आया है? बिंदु रूप में आया है। बाबा मिलने आया है, दिलबर के रूप में आया है, दिल रूप साजन के रूप में आया है, मिलन मनाने के लिए आया है, गोपी वल्लभ के रूप में आया है। क्यों आया है? मिलन मनाने के लिए आया है। मुरलिया तो बहुत सुन ली, अब क्या करो? बाप दादा मुरली का सार रूप जो है वह देखना चाहते हैं। मुरली अब बहुत सुन ली, अब वो करो जो करना है। महाभारत में प्रसंग है श्री कृष्ण के जीवन के, उसको तो वहां पर अवतार दिखाया हुआ है। सांदीपानी के आश्रम में जब अपनी शिक्षाएं पूर्ण करते हैं तो वहां पर विश्वामित्र का आगमन होता है और क्या कहते हैं उसको कि हे गोविंद, मुरलिया बहुत सुना ली, लीलाएं बहुत कर ली, माखन बहुत खा लिया, अब वो करो जो कि करने आए थे। तो किससे कहा जा रहा है? अवतार से कहा जा रहा है। स्मृति दिलाई जा रही है कि अब वो करो जो तुम करने आए थे। तो बाबा आज सभी बच्चों से मिलन मनाने के लिए आए हैं। मुरली सुनाने नहीं आए, परंतु मुरली कितने पेज की है? 3 पेज की तो है। तो बाबा मुरली का सार सुनाने के लिए आए हैं। तो बाबा ज्ञान का सार सुनाने के लिए आए हैं। तो ज्ञान का सार क्या है? ज्ञान का सार क्या है? ज्ञान का बिंदु। और ज्ञान का सार क्या है? बिंदु बन सिंधु बात को बाप को याद करो, वो तो हो गया। ज्ञान का सार क्या है? अब घर जाना है, यह है ज्ञान का सार। और ज्ञान का सार क्या है? स्नेह में बाप के प्यार में समा जाना, यह है ज्ञान का सार। लवलीन हो जाओ। और बहुत है ज्ञान का सार, तो बहुत सारी बातें हैं। आत्माभिमानी, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना, यह है ज्ञान का सार। देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल, स्वयं को आत्मा निश्चय कर, बाप को याद करना, यह है ज्ञान का सार। वो बिंदी हो गया। दूसरा ज्ञान का सार है मन मना भव मध्याजी भव। ज्ञान का सार है एक की याद में मगन। ज्ञान का सार है लगन में मगन। ज्ञान का सार है बाप और वर्षा, अल्प और बे। ज्ञान का सार है नष्टो मोहा स्मृतिर लब्धा। ज्ञान का सार है निराकारी निर्विकारी निरंकारी। यह है ज्ञान का सार। ज्ञान का सार है, ज्ञान का सार है अब घर जाना है, हो गया। निश्चय बुद्धि विजयंती, यह है ज्ञान का सार। ज्ञान का सार है अनुभवी मूर्त बनना, अनुभवी मूर्त बनाना। दुआएं लेना, दुआएं देना। सुख लेना, सुख देना। दुख ना देना और दुख ना लेना, ज्ञान का सार है। संतुष्ट मणि बनना, संतुष्ट मणि बनाना। दूसरों को संतुष्ट करना, आज क्या कहा? सबसे बड़ी सेवा है। दिव्य गुण मूर्त बनना और दूसरों को गुणों का दान देना, यह है सबसे बड़ी सेवा, स्लोगन था। ज्ञान का सार है एक बाप दूसरा ना कोई। एक बाप से सर्व संबंध, एक के प्रति समर्पण भाव, एक के एक से एक की याद में मगन, बोल दिया। और एक के साथ रहना, एक के सिवा और किसी को याद नहीं करना, केवल एक को देखना, एक योगी बनना और पवित्र बनना, ये है ज्ञान का सार। श्रेष्ठ संकल्पों में स्थित हो जाना, ये है ज्ञान का सार। एक संकल्प में स्थित हो जाना, एक सेकंड में एक संकल्प में स्थित हो जाना, ज्ञान का सार। और एक की याद में रहना, वो तो बोल दिया। हाँ, और खुश रहना और खुश करना, खुश रहना और खुशी बांटना। और ज्ञान का सार, आज और कल, ये खेल है ज्ञान का सार। फिर से ज्ञान का सार है, एक ही शब्द फिर से, एक पूरी साकार मुरली फिर से पर चली हुई है। और भी कुछ है ज्ञान का सार? स्वदर्शन चक्रधानी बनना, ये है ज्ञान का सार। स्वदर्शन चक्र फिराना, ये है ज्ञान का सार। और ज्ञान का सार, त्रिकालदर्शी बनना। अभी तारे श्रीमत नहीं सुना हो। ज्ञान का सार, श्रीमत तो बहुत सारी है, बहुत बड़ी लिस्ट है। साथी और साक्षी, ये है ज्ञान का सार। तो ये तो श्रीमत है, शिक्षाएं है। तो बाबा आज आए हैं मिलन मनाने के लिए। बाबा आज आए हैं, मुरली सुनाने नहीं आए, मिलन मनाने आए। 24 अक्टूबर 1969 की अव्यक्त वाणी है, जिसमें बाबा ने कहा है, अब पढ़ाई पूरी हुई, अब बाप आते हैं मिलन मनाने के लिए। 69 में पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अब बाप आते हैं मिलन मनाने के लिए। तो ये तो अब रिवाइज कोर्स चल रहा है, पढ़ाई तो कब की पूरी हो चुकी है। तो ज्ञान का सार क्या है? डॉट। ज्ञान का सार क्या है? पॉइंट। ज्ञान का सार क्या है? बिंदु। बिंदु समझना, आत्माभिमानी स्थिति, यह ज्ञान का सार है। देही अभिमानी स्थिति ज्ञान का सार है। स्थित होकर उसको याद करना। और तीसरा, अब तक जो कुछ हुआ उसको फिर याद नहीं करना, जो भी हुआ उसको पूर्ण विराम, फुल स्टॉप, चाहे जो भी है। कई लोग कहते हैं कुछ कुछ अच्छे दिन है वो हम याद करते हैं, परंतु हमको जीना है कहां? प्रेजेंट में, नाउ, पास्ट में नहीं। अगर अच्छे भी दिन थे परंतु उसको याद करना और ये कहना कि वो अच्छा था, तो हम इनडायरेक्टली ये भी कह रहे हैं कि अभी का जो है वो इतना अच्छा नहीं है, वो ज्यादा अच्छा था। तो पास्ट, इन तीनों में से सबसे आसान, सबसे मुश्किल कौन है? सबसे आसान क्या है? बीती बात को बिंदी लगाना सबसे आसान है कि सबसे मुश्किल? भूलता है आत्मा को, अपने साथ जो जो हुआ है। एक बहुत बड़ा भाषण करने वाला व्यक्ति भाषण कर रहा था, बहुत बड़ा दार्शनिक, बहुत बड़ा ज्ञानी, और बहुत बड़ी सभा थी। उस सभा में भाषण कर रहा था, सभा के बीच में भाषण करते करते उसने एक चुटकुला सुनाया। वो भाषण कर रहा था जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन के सिद्धांत क्या है, जीवन की फिलॉसफी क्या है, क्या फलसफा है इस जीवन का, कैसे जीवन जिया जाए, जीवन जीने की कला क्या है, और उसके बीच में एक चुटकुला सुनाता है। तो सारी सभा हंसने लगती है, हंसी की लहर दौड़ जाती है। 15-20 मिनट के बाद वही चुटकुला फिर से सुनाता है। तो पहली बार तो सारी सभा हंसी थी, दूसरी बार जब सुनाता है तो आधी सभा हंसती है, कुछ लोग नहीं हंसते। थोड़ी देर और भाषण चलता है, तीसरी बार वही चुटकुला सुनाता है, तो फिर तो कोई नहीं हंसता है। फिर चौथी बार कुछ समय के बाद फिर वही चुटकुला सुनाता है, तो लोग अभी क्रोधित हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। एक तो उठ के कहता है कि बंद करो ये बकवास, एक ही तुम चुटकुला बार बार सुना रहे हो। तो कहता है कि मेरे एक ही बात बार बार सुनाने से तुमको इतना दुख होता है, इतनी पीड़ा होती है। तुम अपने ही जीवन को देखो और अपने ही जीवन की बातें जो अपने ही मन से बार बार रिपीट करते रहते हो तो उसका क्या? स्वयं की ही बातें दूसरों को सुनाते रहते हो, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, वही 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 बातें रिपीट करते रहते हो। दूसरों की वही वही बातें रिपीट करना तुम्हें सुनना पसंद नहीं है, पर अपने ही जीवन की बातें अपने ही मन में लाना, इसको क्या कहेंगे? वो दिन कितने प्यारे थे जब बाबा साथ हमारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं जब बाबा साथ हमारे हैं। वो दिन जो अच्छे थे वो तो प्यारे है ही, पर ये भी प्यारे हैं। ये भी एक माया बन सकती है कि जो अच्छे दिन है बस उसी की यादों में रहना। दोनों से मुक्त होना है, पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ, एक दूसरी बात है, जो हुआ है उससे सीखना। जीवन में जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ अनुभव हमको प्राप्त हुए हैं, उनसे सीखना, सीख लेना और आगे बढ़ना, ये दूसरी बात है। पर वो करते हुए भी ऐसा ना हो कि हमारा टाइम वेस्ट उसमें चला जाए, टाइम वेस्ट हो रहा हो। वो जो दृश्य है, जैसे कोई एक्टर है और जिसने कोई एक एक्टिंग की, और वो जब अपना ही वो सीन देखे तो ये समझ के देखे कि यही सीन को अगर मैं और अच्छी रीति से करता तो क्या होता। अगर वो इस रीति से सोचता कि मेरे जीवन में ये जो परिस्थिति आई और मैं यहां उतावला हो गया और क्रोधित हो गया, या वासना ने वार किया, काम क्रोध ये विकारों ने जहां वार कर दिया, इसकी बजाय मैं अगर अचल होता तो क्या होता। अगर इस रीति से उस पास्ट की घटना को देखा जाए तो शायद हम उस घटना से बहुत कुछ सीखे और आगे बढ़े। केवल ऐसे ही याद करते रहे, ऐसे ही सुनाते रहे, केवल पश्चाताप करते रहे, फुल स्टॉप लगाना है तो स्टॉक फुल होगा। वही 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 वही, इसके लिए बाबा कह रहे हैं ये सहज है या मुश्किल है, इसमें सारा ज्ञान समाया हुआ, ये अनुभव है। ये अनुभव कैसा है? अति सूक्ष्म है और अति शक्तिशाली अनुभव है। इस अनुभव के आधार से ही क्या हो जाएगा? सूक्ष्म फरिश्ता बनेंगे और मास्टर सर्वशक्तिवान का पार्ट प्ले करेंगे। किस आधार से? स्वयं को आत्मा निश्चय करने के आधार से। स्वयं को आत्मा निश्चय कर उस परमात्मा को याद करने से। और तीसरा जो अब तक हुआ है, स्टॉप, पूर्ण विराम, जीवन की वो बातें अभी फिर नहीं दोहराना है। बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, समय बहुत कम है। श्रेष्ठ कर्मों के बीज बोने का समय अब है। 84 जन्मों के रिकॉर्ड, संस्कारों का रिकॉर्ड भरने का समय अब है। 21 जन्मों की कमाई करने का समय अब है। महान आत्मा बनने का समय अब है। संगम युग का एक सेकंड भी वेस्ट किया तो कई वर्षों के समान है, वरदान था ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि बाबा सार स्वरूप, सारे ज्ञान के विस्तार का ये सार है। इस अनुभव में अगर स्थित हो गए तो अति शक्तिशाली और अति सूक्ष्म और शक्तिशाली अनुभव है। इसमें स्थित होने से ही सूक्ष्म फरिश्ता और मास्टर सर्वशक्तिवान बनेंगे। डबल विदेशियों से क्या कहा? डबल इजी है ये, कि मुश्किल है? आगे आगे क्या कह रहे हैं बाबा, याद है? पढ़ी है ना सबने मुरली माता, पढ़ी है ना कि नहीं? दादी जान की जब ज्ञान में आए थे तो 1.5 साल हो चुका था। दादी को बहुत चिंता थी कि मुझे लेट हो गया है। बाबा से पूछा मैं क्या करूं कि मैं कब कर लूं, तो बाबा ने क्या कहा? मुरली 6 बार पढ़ो। तो दादी ने क्या कहा, क्या सोचा मन में कि अगर 6 बार पढ़ना बाबा ने कहा है तो मैं कितनी बार पढ़ूंगी? 12 बार। कब आए थे? तब, कितने सालों पहले की बात है, 1.5 साल लेट हुआ था। हम जब ज्ञान में आए वो डेट, उससे ये चेक करो कि हमको कितना लेट हो गया है। 36 से लेकर तो स्कूल चालू हुई जनवरी में, एडमिशन कब ली? अप्रैल में ली, मई में ली। पढ़ाई का इम्तिहान तो एक ही समय में है, तो गैलअप करना पड़ेगा। कल था, पुरुषार्थ के वेग को तीव्र करना पड़ेगा, तब तक ये कार्य नहीं होगा। जो जिस गति से, जिस पुरुषार्थ से हम चल रहे हैं, उससे ये काम नहीं होने वाला है। ऑलरेडी लेट हो गया है, सबको ये रियलाइजेशन हो जाए अंदर ही अंदर कि लेट हो गया है, बहुत लेट हो गया है। तो बाबा ने क्या कहा आगे, क्या देखना चाहते हैं बाबा, क्या बन जाओ, सार स्वरूप तो देखना चाहते हैं, एक ऐसा एक मिरर, डिवाइन मिरर जिसको कहते हैं, एक दर्पण, एक आईना बनने के लिए बाबा कह रहे हैं। ये एक ऐसा आईना है कि जिसमें दूसरों को कुछ दिखे और हमको भी हमारा कुछ दिखे, स्वयं हम अपने ही स्वरूप को उसमें देख सके, हमारा स्वरूप क्या है, ऐसा ये दिव्य दर्पण है। ऐसे दिव्य दर्पण की बाबा बात कर रहे हैं, ऐसे दिव्य दर्पण बनने की बात बाबा कर रहे हैं। ऐसा दिव्य दर्पण बन जाओ कि दूसरों को क्या दिखे उसमें, उनको साक्षात्कार हो जाए, उनको स्पष्ट दिखाई दे, उनको अनुभव हो जाए। क्या अनुभव हो जाए, अपने ही स्वरूप, तीन स्वरूप का, थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ टाइम, उनको अपने तीन स्वरूप उसमें दिख जाए, पहले क्या थे, अब क्या है और भविष्य में क्या मिलने वाला है, ये त्रिकाल का दर्शन उनको हो जाए। कितनी ऊंची बात है ये कि हम में उनको ये सब दिख जाए कि हम क्या थे, अब क्या है और क्या बनने वाले। ये जब होगा, ऐसा जब साक्षात्कार होगा, तब वो आकर्षित होंगे। उनकी जो आस है जन्म जन्म की, किसकी, स्वर्ग मुक्ति की या स्वर्ग में जाने की आस। कौन सी आत्माओं की, दो प्रकार की आत्माएं हैं। पहली आत्माएं जो भक्त आत्माएं हैं, जिनको मगन हो जाना है बस प्रेम में। परंतु मगन क्या हो जाना है, लीन क्या होता है, मर्ज होना क्या है, ये उनको पता नहीं है। उसका रहस्य भी तुमको बताना है उन्हें, ये लीन होना क्या है, वर्तमान में लीन होना क्या है, भविष्य लीन होने का रास्ता क्या है, ये तुमको उन्हें बताना है। तो लीन होना, भक्त आत्माएं लीन होना चाहती है, मगन हो जाना चाहती है, खो जाना चाहती है, डूब जाना चाहती है। परमात्मा मिलन उनके लिए लंबी खजूर है, पिछले संडे की मुरली, बाप को प्रत्यक्षता करने के डबल प्रूफ बनने के लिए बाबा ने कहा था। एक तो माया से प्रूफ और दूसरा प्रूफ था ये, प्रवृत्ति में रहते निवृत्त रहना, और दूसरा प्रत्यक्षता का, तीन प्रमाण दिए थे। दूसरा प्रमाण था परमात्मा मिलन, जो तुम्हारे लिए सहज है उनके लिए मुश्किल, तुम्हारे लिए अधिकार, और उनके लिए बाप परमात्मा नहीं है, तुम्हारे लिए परमात्मा बाप बन चुका है। तो जो भक्तों के लिए मुश्किल है, ऐसे जो भक्त है उनको कौन सा अनुभव कराना है, मगन स्थिति का अनुभव कराना है, जैसे कि खोए हुए है। और दूसरे प्रकार की कौन सी आत्माएं हैं, जो क्या चाहती है, बोलो ना, क्या चाहती है, बाबा नहीं, दो प्रकार की आत्माएं बताइए बाबा ने। एक आत्मा है तो वो है जो प्रेम में लीन होना चाहती है, और दूसरी आत्मा है वो जो ज्योति में समा जाना चाहती है। कौन सी आत्माओं की बात कर रहे हैं ये, भक्त लोग। भक्त तो प्रेम में लीन होना चाहते हैं, ये कौन सी आत्माएं हैं, ये सन्यासी आत्माएं हैं। अद्वैत वेदांत का क्या सिद्धांत है, जो ब्रह्म में लीन होना चाहती है। तीन फिलोसॉफी संसार में आई है, सबसे पहला शंकराचार्य जब आए, आदि शंकराचार्य, आदि शंकर जिसको कहते हैं, अद्वैत वेदांत की स्थापना हुई 7वीं शताब्दी में। उसके कुछ समय बाद रामानुजाचार्य का आगमन हुआ, उसके द्वारा विशिष्ट अद्वैत की स्थापना हुई। उसके बाद में और एक सिद्धांत आया, द्वैतवाद। अद्वैतवाद क्या कहता है कि जो कुछ है सब कुछ क्या है, ब्रह्म है, सर्व खलविदम ब्रह्म। दूसरा महावाक्य क्या है, चार महावाक्य है उस सिद्धांत के। दूसरा महावाक्य है कि अयमात्मा ब्रह्म, मैं आत्मा ही ब्रह्म हूं। तीसरा है प्रज्ञानम ब्रह्म, ये ब्रह्म कैसा है, चेतन है। और लास्ट महावाक्य है अहम ब्रह्मस्मि। अब ऐसी जो आत्माएं हैं संसार में, जो सन्यासी आत्माएं हैं, उनका उनकी क्या इच्छा है, माया उनके लिए क्या है, देह नाम और रूप माया है। आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाए, ज्योति ज्योत समा जाए, उनकी ये आश है। तो उनको क्या करना है, हमको ब्रह्मलोक में पहुंचाना है। ब्रह्मलोक में पहुंचाकर उनको वो अनुभव कराना है जैसे आत्मा वो ज्योति में समा गई है। ये सन्यास मार्ग है अद्वैत वेदांत का। दूसरा और एक जो मार्ग मैंने बताया, विशिष्ट अद्वैत, जिसमें ये समझते कि आत्मा परमात्मा में और परमात्मा आत्मा में है। ये एक्चुअली मार्ग नहीं, हमारी स्थितियों का वर्णन बताया है इन महापुरुषों ने। तीसरा मार्ग है द्वैत। द्वैत अर्थात आत्मा अलग परमात्मा अलग। तो भगवान ब्रह्मा कुमारीज की जो सिद्धांत है वो द्वैतवाद पर है। तो ये एक्चुअली हमारी स्थिति है। जब हम बाबा के पास पहले आते हैं तो मैं आत्मा अलग और बाप अलग। बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ते तो क्या अनुभव होता है, वो मुझ में है और मैं उसमें हूं। और बाद में क्या अनुभव होता है, बाप समान। तो इस तरह से जैसे कि ये तीन भाग है, एक है भक्ति मार्ग, एक है संन्यास मार्ग और एक है हमारा मार्ग। भक्ति मार्ग की सर्वोच्च अवस्था है जैसे उसमें लीन हो गए, प्रेम में लीन हो गए उसके, उसमें नहीं प्रेम में। संन्यास मार्ग क्या करता है, निर्विकल्प समाधि में आत्मा जैसे परमात्मा में समा गई। और हमारी क्या अवस्था है, बाप समान। तो बाप समान इधर एक निर्विकल्प समाधि और उधर वो भक्ति की सर्वोच्च अवस्था। परंतु आत्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, इसके लिए वो ना तो तत्व में लीन हो सकती है ना तो परमात्मा में लीन हो सकती है। तो ये जो लीन होने का राज है, क्या कहा बाबा ने उनको, तुम समझाओ परमात्मा मिलन क्या होता है, परमात्मा परिचय, परमात्मा मिलन, परमात्मा प्राप्ति, परमात्मा संबंध, ये क्या है, ये तुम उनको समझा सकते हो। समझाना नहीं, साक्षात्कार कराना अर्थात स्पष्ट दिखाना, अर्थात वो पहचान ले, तब उनकी जन्म जन्म की जो आस है मुक्ति में जाने की या स्वर्ग में जाने की, कहाँ जाना है, अल्लाह के पास जाना है या बहिष्ट में जाना है, पूछो उनको। किसी को अल्लाह और बहिष्ट अलग अलग, अल्लाह का घर अलग और बहिष्ट अलग, गुरुवार की मुरली थी ना। तो इतना बड़ा दायित्व हमारे सर के ऊपर है, क्या बन जाना है, ऐसा दिव्य दर्पण बन जाना है कि जिसमें आत्मा को उनके त्रिकाल का दर्शन हो जाए और वो आकर्षित होकर आ जाए, जिसमें आत्माओं को ऐसा लगे कि हमारी अब ये जो आश है ये पूर्ण होने वाली है, इसके लिए वो खिंचकर आकर्षित होकर हमारे पास आ जाए। वो जो भक्त है, इतने सारे भक्त राह देख रहे हैं, उनकी जो आश है उसको हमें पूर्ण करना है। जो समझते हैं कि भक्ति करते 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 जैसे वो उसके जैसे हो गए, ऐसा उनको अनुभव होता है। काम क्रोध निमले ठाईचे झाला स्वयमेव पांडुरंग, ऐसे भक्तों के अनुभव है, खुद ही जैसे कि मैं वो हो गया हूं भक्ति करते करते, ऐसे उनको लीन होने की अनुभूति होती है। वो हमें करानी है। दिव्य दर्पण का ये एक काम। दूसरा काम, दूसरा क्या, स्वयं को देखना है, अपने पुरुषार्थ के हर समय की रिजल्ट का चित्र खींचना है। किसमें, उस दिव्य दर्पण में, अपने पुरुषार्थ के हर समय के रिजल्ट का चित्र उसमें खींचना है और देखना है क्या मेरी पोज है। पोज अर्थात मुद्रा, कौन सी मुद्रा में हूं, दो बताएं कौन कौन से, एक तो व्यर्थ, एक समर्थ, एक दिल तख्त नशीन मास्टर सर्वशक्तिवान, दूसरा योद्धा, युद्ध के मैदान में है, शस्त्र हाथ में है, इधर याद में, उधर फरियाद में, इधर सफलता की मूर्त और उधर मेहनत की मूर्त। अपने आप को देखना है, मैं क्या हूं, युद्ध कर रहा हूं, युद्ध के मैदान में हूं, छोटी छोटी बातों में मेहनत कर रहा हूं, मेहनत की मूर्त हूं, व्यर्थ में हूं, कौन सी मुद्रा है मेरी, कौन सा पोज है मेरा, स्वयं को स्वयं देखना उसमें। इसमें दूसरों को नहीं देखना कि इसकी क्या मूर्त है, ये मेहनत मूर्त क्यों है, इसमें व्यर्थ अब तक क्यों है, ये नहीं देखना। इसमें स्वयं को चेक करने की बात है, स्वयं को देखना है। ये फरियाद क्यों करते अब तक, स्वयं स्वयं को देखना। जैसे दिखाते हैं ना, एक गुरु था, उसका एक शिष्य था, अपने शिष्य को उसने एक दिव्य दर्पण दिया और अपने शिष्य को कहा कि ये दर्पण, आज तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई, अब इस दर्पण को ले जाओ। उसने कहा इस दर्पण की क्या विशेषता है, उसने कहा इस दर्पण को जिसकी ओर भी करोगे उसके हृदय में क्या चल रहा है तुम्हें सब दिखेगा। तो सबसे पहले वो छुपके से अपने गुरु के तरफ ही करता है, तो देखता है कि जिसके पास मैंने इतने सालों तक शिक्षा ली वो देखता है उसके हृदय में तो क्रोध, काम, ईर्ष्या सब कुछ है। मैं तो समझता था ये बहुत बड़ा सत्पुरुष महापुरुष है और इसके हृदय में तो ये सारी चीज है, फिर भी वो बड़ा ही दुखी होकर खिन्न मन से वहां से निकल जाता है न बताते हुए। वो बड़ा उदास हो जाता है कि जिस व्यक्ति से, जिस महापुरुष से मैंने इतना कुछ सीखा, इतना जो मुझे शिक्षा दी, उसके हृदय में तो सारे अवगुण है। घर जाता है, अपने मां बाप की तरफ देखता है, करता है तो देखता है इनमें भी वही सारे अवगुण है। फिर जिससे भी मिलता है सबकी तरफ करता है, जिसके भी तरफ करता है और ही दुखी होता है, कहता है कि इसके हृदय में क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, मद है, मत्सर है, अहंकार है, सबके हृदय में बस अवगुण ही भरे पड़े हैं, कोई भी एक सद्गुण वाला व्यक्ति नहीं है। बहुत उदास होकर कुछ सालों के बाद फिर अपने गुरु के पास कहता है मुझे नहीं चाहिए ये। बोलता है क्यों? क्योंकि मैं जिसके भी तरफ करता हूं उसमें अवगुण ही दिखते। गुरु करते आ रहे ये दर्पण मैंने तुम्हें अपने हृदय की तरफ करने के लिए दिया था, दूसरे की तरफ नहीं, तुम्हें अपने अवगुण देखने थे इस हृदय, इस दर्पण से। यह ऐसा दिव्य दर्पण था, तुमने तो उल्टा कर दिया, दूसरों को देखते रहे, इसके लिए तो दुखी हो गए। तो दूसरों को देखेंगे तो दुखी हो जाएंगे। तो ये दिव्य दर्पण बाबा ने दिया है, जिसमें क्या कहा, स्वयं को देखो, कौन सी पोजे मेरी व्यर्थ है या समर्थ है, हर समय के संकल्प, हर समय के पुरुषार्थ की रिजल्ट उसमें चेक करो। हर समय की शब्द है बाबा का, हर समय के पुरुषार्थ की रिजल्ट, मेरी कौन सी अवस्था है, युद्ध ही कर रहा हूं अभी कि सब कुछ सहज हो गया है। लास्ट संडे की मुरली तीन स्वरूप देखे पवित्रता के, सबसे पहला जो पवित्रता का अभी तक भी उतरते हैं और चढ़ते हैं, डाग लगता है और फिर मिटाते हैं, संकल्प आते हैं और फिर हटाते हैं, ये पहला ग्रुप था। हम वो ग्रुप में तो नहीं है। दूसरा ग्रुप था, एक बार हटाया अब तक भी पवित्र है, अब तक संकल्प में भी नहीं आया बस, ये दूसरा। और तीसरा तो वो था जिनको आवश्यकता ही नहीं है, वो जो पास विद ऑनर है, वो तो सब कुछ करते हुए, श्रीमद देते हुए, दूसरों को पवित्र बनाने की विधि सुनाते हुए भी, कमी कमजोरियों को देखते सुनते हुए भी, बाप के डायरेक्शन पर चलते हुए भी स्वयं पवित्र रहते हैं, संकल्प और स्वप्न तक भी नहीं आया है, उनको पुरुषार्थ आवश्यकता ही नहीं है पुरुषार्थ करने की, ऐसे भी स्वच्छ सिद्धि स्वरूप आत्माओं को बाप ने देखा। तो हम कहां है, अपने आप को देखना, अपने ही अंदर देखना, इस दर्पण में, इस दिव्य दर्पण में देखो कि मेरा पोज कौन सा है, मैं किस मुद्रा में हूं, अभी भी आलस, अभी भी अलवेलापन, अभी वही संकल्प, अभी वही विकर्म, अभी वही दृष्टि क्रिमिनल हो रही है क्या, सारा हफ्ता क्रिमिनल आए, क्रिमिनल आए, क्रिमिनल आए, कितनी बार आया, बहुत बार आया है, कितनी बार आया है, अभी भी दृष्टि चलायमान हो रही है क्यों, अभी भी देह आकर्षित कर रहा है क्यों, अभी भी आत्मिक दृष्टि नहीं है क्यों, अपनी ही मुद्रा को देखो, अभी भी संघर्षरत हूं, अभी भी युद्ध चालू है, अभी भी युद्ध के मैदान में हूं कि दिल तख्त नशीन हूं, बैठा हूं कि खड़ा हूं, मास्टर सर्वशक्तिमान हूं कि मेहनत की मूर्त बना हूं, मेहनत स्वरूप हूं, मुश्किल स्वरूप हूं, क्या हूं, स्वयं स्वयं को देखना इस दिव्य दर्पण में। जब ये देखोगे तब वो भी होगा, तो फिर वो दूसरों को दिखा सकोगे उनके त्रिकाल का दर्शन, क्या थे, क्या है और क्या बनने वाले हैं, क्या मिलने वाला है उन सभी आत्माओं को, मुक्ति, जीवन मुक्ति वरदान में भी बोला है, देते रहो। त्रिस्वरूप तीन बिंदिया, तो ये अभ्यास है। आगे बाबा किससे मिल रहे हैं, डबल फॉरेनर से मिल रहे हैं, और किससे मिल रहे हैं, गुजराती, दो में क्या समानता बताई, डांस करने की राशि दोनों की एक है, विदेशियों को डांस करना बहुत अच्छा लगता है। बाबा ने कभी एक अव्यक्तवाणी चलाई थी जिसमें कहा था कि अगर उदास हो जाओ तो डांस पर कहां जाके, बाथरूम में जाके, बाथरूम में जाके क्या करो, डांस करो। तो डांस करने की राशि दोनों की सेम है। एक दूसरी विशेषता, दूसरी समानता कौन सी है दोनों में, प्रेम स्वरूप, वो भी प्रेम पूर्ण है और ये भी प्रेम से क्या करते हैं, विदेशी भाग भाग के आ जाते हैं, प्रेम से क्या करते हैं, परवाने बन जाते हैं, प्रेम की वजह से क्या हो गए, चुंबक बन गए, चुंबक की तरह खींचकर आते हैं, प्रेम की वजह से कितना भी सुनना पड़े और मरना पड़े उसके लिए भी तैयार है। कई विदेशियों के अनुभव, एक किताब है ना प्रभु प्रेम के परवाने, सभी विदेशी भाई बहनों का उसमें अनुभव है, अगर वो किताब पढ़ो तो उसमें जितने अनुभव है सबने एक ही चीज लिखी है, प्रेम। बाबा तो बाद में समझ में आया, ज्ञान बाद में समझ में आया, सबसे पहले ये बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आई, जैसे ही आए ज्ञान में उनको लगा ये ज्ञान हमारा है, ये ज्ञान नहीं ये बाप हमारा है, ये प्रेम बाबा का जो प्रेम है उसने ही उन सबको खींचा, ऐसा लगा ये जो परिवार है ये हमारा परिवार है, हम इस धर्म की पुरानी आत्माएं हैं, ये सबको अनुभव हुआ, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। वो ज्ञान और वो कोर्स वो तो कई लोगों ने बाद में किया, उसमें जितने अनुभव है सबके अधिकतर अनुभव इसी तरह के है, प्रेम ने उनको खींचा, बाबा ने आज कहा प्रेम ने उनको क्या बना दिया, परवाना बना दिया, प्रभु प्रेम के परवाने हैं वो, प्रेम ने उन्हें परवाना बना दिया, प्रेम ने खींच लिया, प्रेम ने आकर्षित कर दिया, प्रेम ने अपना सब कुछ स्वाहा करने के लिए बाध्य कर दिया, जैसे ऐसी ऐसी आत्माएं संसार में हुई है कि जो संपूर्ण नास्तिक थे वो भी बाप के प्यार में पिघल गए, जो मार्क्सवादी है, कई रशिया के भाई बहन हैं जिनका अनुभव आप सुनो, उसमें रशिया में उस समय कम्युनिज्म था, कम्युनिज्म अर्थात कार्ल मार्क्स का सिद्धांत, कार्ल मार्क्स एक जर्मन फिलोसोफर था जिसने कहा था कि अगर कोई मुझे भगवान जब तक इस टेस्ट ट्यूब में दिखाए और उसकी जांच ना करे मैं परमात्मा को मानने को राजी नहीं हूं, ऐसा व्यक्ति था वो, नास्तिकवाद पूर्ण रशिया जब वो यूएसएसआर था 92-93 से पहले, कम्युनिज्म था वहां पर उस समय, ऐसी जो आत्माएं थी जहां पर भगवान नाम लेना भी जैसे कि प्रोहिबिटेड था, वर्जना थी वहां पर, टैबू था, उस समय भी कई आत्माएं वहां से ज्ञान में आई है, किस आधार से आई है, प्रेम के आधार से, यह ऐसा प्रेम है कि आत्माओं को खींच लेता है, जो जो इस झाड़ की झाड़ के पत्ते हैं वो आ गए, खिंच खिंच कर आ गए, कोई उन्हें रोक नहीं सका, जो कन्वर्ट हो गए थे सब आ गए, तो किसने खींचा उन्हें, प्रेम ने खींचा, परमात्मा प्रेम ने, ऐसी आत्माएं, और भगवान को भी ऐसी ही आत्मा पसंद है, किससे प्यार है भगवान का, कल का वरदान परसों का, जो भोलों का भगवान है, परमात्मा डायरेक्टरी में विशेष वीआईपी भोले बच्चे, उसको बाह्य मुखी चतुराई पसंद नहीं है, ऐसी आत्माएं उसे पसंद है। तो क्या कह रहे हैं उनको, इस प्रेम ने उनको सुनने के लिए और क्या करने के लिए, मरने के लिए तैयार है। संसार में क्या कहते हैं, मरते हैं तो कहां जाते हैं, स्वर्ग। बाप क्या कहते हैं, जो संगम पर मरते हैं वही स्वर्ग में जाते हैं। मरना अर्थात क्या, जीवंत मृत्यु, जीवंत मृत्यु, किसका उदाहरण दिया वहां पर, एक उदाहरण दिया ना क्रिश्चियन फिलोसॉफी का, उसमें जैसे कि मुर्दे में जान डाल दी, बाइबल में लिखा है जीसस क्राइस्ट एक गांव में रुका है अपने शिष्य के साथ, वहां पर उसकी एक अनन्य भक्त है जिसका नाम था मरियम, मैरी जिसको कहते हैं इंग्लिश में, वो उसके जीवन में और एक चीज दिखाई है, एक बार वो मरियम जो होती है अपने बहुत महंगा इत्र से उसके पाँव धोती है और अपने बालों से उसके पाँव को पोंछती है, तो एक शिष्य उसमें से जो कहता है कि ये करने से अच्छा ये जो इत्र है और ये जो तुम खर्चा कर रही हो अगर ये गरीबों में बांट दिया जाए तो कितनी बड़ी सेवा कर रही हो, ये क्यों तुम वेस्ट कर रही हो। तब एक बहुत अच्छा महावाक्य कहता है कि ये जो गरीब लोग है, जीसस कहता है ये गरीब लोग तो हमेशा रहेंगे पर मैं नहीं रहूंगा, इसके लिए करने दो, उसकी भक्ति भाव उसकी जो भावना है उसे पूर्ण करने दो। यही मरियम और उसका जो भाई होता है एक लाजरस, वो बहुत बीमार रहता है दो दिन से, परंतु दिखाया है वो उसी गांव में है बेथलेम में, परंतु जीसस उसको मिलने नहीं जाता है ना ही उसको पूछता है, उसको बुलाया जाता है कि वो बहुत बीमार है आ जाओ पर वो नहीं जाता है, वो कहता है बिकॉज द नेम ऑफ द लॉर्ड गॉड इज टू बी ग्लोरिफाइड, क्योंकि परमात्मा का नाम बाला होने वाला है। कैसे, उसकी फिर मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है तो फिर उसके बाद में वो जो उसकी दूसरी बहन होती है मार्था, वो भागकर उसके पास आती है कि अगर तुम होते तो मेरा भाई नहीं मरता, तुम आए क्यों नहीं? वो फिर भी नहीं जाता। फिर वो जब वो मरियम आती है, उसकी दूसरी बहन, वो कहती है, वो फिर से वही कहती है, इफ यू हैड बीन हियर माय ब्रदर वुड नॉट हैव डाइड। तुम क्यों नहीं आए? तो कहता है कि तेरा भाई जिएगा। तो बोलती कैसे? वो तो मर चुका है, वो तो अंत कयामत के दिन, वो बोल कयामत के दिन नहीं अभी जिएगा। और वो उसको दिखाते हैं, ले जाते हैं वहां पर एक गुफा है जिसको ढका हुआ रहता है। वो कहता है गुफा के वो पत्थर को हटाओ। वो कहता है कैसे हटाएंगे, चार दिन पहले मृत्यु हुई है, पूरा बास आएगा, क्या करे? वो कहते हैं हटाओ। और वो चिल्लाता है लाजरस कम आउट। तो दिखाया है जो मर चुका है, जो मुर्दा है, वो चलते हुए वहां से आ रहा है। आज की मुरली में बाबा ने कहा जो मर चुके हैं उसमें जान डालते हैं, जो दुनिया से मर चुके हैं उसमें भगवान आकर क्या करते हैं? जान डालते हैं। नया जन्म, द्विज, ब्राह्मणों को द्विज कहा जाता है, जिनका पुनर्जन्म हुआ है, पुनरुत्थान, पुनर्जन्म। तो बाबा ने यह भी उदाहरण दिया, है मरे हुए परंतु हंस रहे, यही वंडर है, नाच रहे, गा रहे, झूम रहे, सदा खुशियों में झूम रहे, यही वंडर है। मर चुके हैं दुनिया से पर झूम रहे, जो सदा खुश रहते हैं, सदा खुश रहने वाले हैं। आगे क्या कहा? कई कई ऐसा तो नहीं है किसी की सांस उधर अटकी पड़ी है संसार में, अभी भी संसार खींचता है, आकर्षित करता है, ये जाऊं इधर देखूं, ये करूं वो करूं। बाप ही संसार, अर्थात क्या, इस बाप एक समुद्र है, उस सागर से अगर बाहर निकाल दिया जाए तो मछली को अगर सागर से बाहर निकाल दिया जाए तो क्या होगा? मर जाएगी ना। तो तुम्हारा सागर कौन है? कुंती माता, एक बाप। तो इस सागर से अगर बाहर निकाल दिया जाए तो हमारा अस्तित्व नहीं है। हाँ अच्छा, मधुबन में ही रहते हैं, अंदर ही अंदर। तो बाबा ने तीन बातें बताई, सबसे पहला तीन बिंदु, दूसरा दिव्य दर्पण, और तीसरी मृत्यु, जीवंत मृत्यु। इस संसार की कोई आश नहीं, कोई कामना नहीं, कुछ पाने की इच्छा नहीं। एक बाप को पा लिया, सब कुछ पा लिया, एक बाप में ही सारा संसार समाया हुआ है, उसी में ही जीवन के अब सारे अर्थ ढूंढने हैं। संसार की कामनाएं, संसार की इच्छाएं, तृष्णाएं, वासनाएं कितनी भटकाती है, कितनी दौड़ाती है। वरदान में था ना, चिंता क्या करती है? दौड़ाती है, बहुत दौड़ाती है। इसके लिए पाओ अचल निश्चय के पाओ। कौन सा निश्चय? एक बाप, दूसरा ना कोई। एक बाप में ही संसार। आगे दादियों से या दीदी से मुलाकात, इसको बाद में, सबसे पहले उधर आते हैं। पार्टियों से मुलाकात में क्या कहा बाबा ने? तुम सब कौन हो? पार्टी नंबर एक, मणि हो। कौन सी मणि हो? चमकती हुई मणि हो। कैसी मणि हो? कैसे रत्न हो? अमूल्य रत्न हो। किसके रतन हो? बाप का बनना, अर्थात अमूल्य रतन बनना। दुनिया इतना नहीं समझती है जिनको, उसके की वैल्यू को, जो वही उसी वरदान में भी कहा था ना। और तुम क्या बन गए हो? एक संकल्प और एक शब्द, एक सेकंड का एक शब्द, मेरा बाबा। तो तुम क्या हो? अमूल्य, अमूल्य क्या हो? रतन हो। यही सर्वश्रेष्ठ क्या है? भाग्य है। बाप का बन जाना ही सर्वश्रेष्ठ भाग्य है। संसार में चाहे कोई कितना भी बड़ा है, परंतु क्या बाप को जाना? नहीं जाना ना। दिव्य बुद्धि है? नहीं है। दिव्य बुद्धि अर्थात जो बाप को जान ले, स्वयं को उस पर अर्पण कर दे, इसे कहा जाता है दिव्य बुद्धि। तो हम सब कौन है? अमूल्य रतन है। हम सब कौन है? चमकती हुई मणि है। यही सर्वश्रेष्ठ भाग्य है। फिर बाबा ने सेवा के लिए कुछ डायरेक्शंस दिए। क्या कहा सेवा के लिए कमलेश भाई? यज्ञ सेवा, सहयोगी हो, ऑलराउंडर हो, सेवा करोगे तो क्या हो जाएगा? निर्विघ्न हो जाओगे। सेवा करोगे तो क्या हो जाएगा? कौन सी प्राप्तियों का प्रसाद मिलेगा? अनगिनत प्राप्तियों का प्रसाद मिल जाएगा। सेवा करोगे तो क्या हो जाएगा? एक का हजार गुना फल मिल जाएगा। यही लिफ्ट है, सेवा का चांस मिलना यही लिफ्ट है, मधुबन में आना यही लिफ्ट है, यहां आकर सेवा करना इससे बड़ा और कोई भाग्य नहीं है। यहां आ जाना और यहां पर सेवाएं करना, बेहद घर में आकर सेवा करना, यह बहुत बड़ा भाग्य है। इसके लिए कुछ दिन पहले वरदान था ना, आंतरिक खुशी जो है ना, यही तुम्हारा जीवन का लक्ष्य और लक्षण है। चाहे हद की प्राप्तियां छोड़नी भी पड़े तो छोड़ दो, परंतु ये जो आंतरिक खुशी है ये नहीं जानी चाहिए। और एक वरदान था ट्यूजडे का, उसमें क्या कहा था, सेवा करोगे तो क्या मिलेगी, आंतरिक अलौकिक, आंतरिक अलौकिक और अविनाशी खुशी, रूहानी मौज, बेहद की प्राप्ति, सर्व का सम्मान, दुआओं की खुशी, खुशी के सागर में लहराते रहेंगे। इतना सारी चीजें होती है, इसके लिए हद की जो प्राप्तियां हैं अगर छोड़ना पड़े तो छोड़ दो, परंतु यहां आना और यहां सेवा करना यह बहुत बड़ी लिफ्ट है, बहुत बड़ा भाग्य है, इससे बड़ा भाग्य कोई नहीं है। जो आंतरिक खुशी हमें प्राप्त होती है सेवा करने से, क्या वो और किसी को हो सकती है? नहीं हो सकती। तो ऐसे खुशी प्राप्ति करने का समय ये है, आंतरिक खुशी, अलौकिक खुशी, आत्मिक खुशी, अविनाशी खुशी, कोई छीन नहीं सकता इस खुशी को, और जो केवल हर आत्मा ही अनुभव कर सकती है, और कोई नहीं, जो सेवा में उस भाव से जो सेवा करती है, कहां हम हैं, किसकी सेवा कर रहे, किसका ये यज्ञ है। तो यज्ञ सेवा करना बहुत बड़ा भाग्य है। सूक्ष्म और स्थूल लंगर सदा लगा रहे, सबसे बड़ी सेवा है किसी को भी संतुष्ट करना, मेहमान नवाजी ही सबसे बड़ा भाग्य है। जब किसी के घर में मेहमान आते हैं तो भाग्यशाली होता है वो घर। हमारे घर में कौन मेहमान आया है? मधुबन घर में सुधा माता कौन आया है हमारे घर में मेहमान बनकर? बाप आए हैं। तो जिसके घर में मेहमान आते हैं वो घर भाग्यशाली होते, और जिसके घर में वह मेहमान आता है, हसीन मुसाफिर, खूबसूरत, तो वो घर कितना भाग्यशाली है। इस भूमि पर किसके कदम पड़े हैं? परमात्म कदम पड़े हैं। धन्य भूमि वनपंत पहारा, जहां जहां नाथ पाव तुम धारा, ये वो भूमि है जहां कर उस नाथ के पैर पड़े हैं, वहां पर हम बैठे हैं। अभी जिस हॉल में हम बैठे हैं, ये कौन सा हॉल है? कौन से वाइब्रेशन से यहां पर? क्या ऐसे वाइब्रेशन इस विश्व में, इस संसार में, इस जगत में खरीदे जा सकते हैं? और किसी साधन से, वस्तु से, सामग्री से प्राप्त किए जा सकते हैं? नहीं, सहज प्राप्त हुआ है। तो उसके आते ही ये भूमि धन्य हो गई है, पवित्र हो गई है। उस पवित्र भूमि में हम हैं, उस पवित्र भूमि में हम उसके यज्ञ की सेवा कर रहे हैं। कितना बड़ा भाग्य है। पार्टी नंबर दो, क्या कहा? बोलो। माया को जानते हुए भी क्या माया से अनजान? कैसा अद्भुत महावाक्य है। माया को जानते हुए भी माया से अनजान। माया क्या है पता है, परंतु उससे अनजान। उदाहरण दिया, जैसे देवताएं माया के वार से अनजान है, वैसे माया पता तो है क्या है, परंतु माया वार नहीं कर सकती, इतने हम शक्तिशाली हो गए हैं। माया को जानते हुए माया से अनजान, अनभिज्ञ, माया से जैसे पता ही नहीं क्या है माया, इच्छा मात्रम अविद्या जैसा है ना, वैसे माया से अविद्या, वैसे विकारों से। आगे क्या उदाहरण दिया बाबा ने? किला कैसा हो? मजबूत। दरवाजा बंद, माया को मेहमान बनाकर तो नहीं बुलाते हो। दरवाजा क्या हो? बंद हो। किला कैसा हो? मजबूत हो। और दीवार कैसी हो? ऊंची। तो दीवार कौन सी है? स्थिति की दीवार है, कि जिसमें कोई भी विकार प्रवेश न कर सके, हमारी स्थिति इतनी ऊंची हो, किला इतना मजबूत हो कि कोई भी विकार, हिम्मत नहीं है उसकी देखने की भी, दरवाजा सदा बंद, डबल लॉक लगा हुआ उसमें। फिर बाबा ने यहां मोह की बात की, बाप का बनना अर्थात मेरापन समाप्त। ये मेरापन क्या करता है? माया की उत्पत्ति का कारण मेरा। कौन सी चीज वरदान था ना कमलेश भाई? क्या वरदान था? मेरा क्या करता है? भय को जन्म देता है। मेरा धन, धन सो भी नहीं सकते, खा भी नहीं सकते, भय की उत्पत्ति होती है। इस संसार में भय की, भय ही समाया हुआ है। जहां देखो वहां भय, धन से भय, हर चीज से भय। क्यों मैं है? भय क्यों है? कारण क्या है? मेरा। हर चीज को हम अपना समझते, किसी व्यक्ति को अगर अपना समझा तो भय होगा, कोई छीन ना ले। कोई व्यक्ति हमारा नहीं है, कोई वस्तु हमारी नहीं है, किसी व्यक्ति की देह हमारी नहीं है। गृहस्थ व्यवहार में पवित्रता कोई भी हमारा नहीं है। अधिकार समझना सबसे बड़ी माया है। तो माया के अपने को हत का रचयिता समझना अर्थात विकारों को उत्पन्न करना, भाई भाई की दृष्टि समझना अर्थात विकारों की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती अगर भाई भाई की दृष्टि है तो। तो उस वरदान में क्या था? सूक्ष्म चेकिंग करके मेरापन कहां कहां है, वस्तु, व्यक्ति, वैभव, साधन, सामग्री, छोटी छोटी वस्तु, जहां जहां मेरापन है उस मेरे मेरे को समाप्त करना है। इस मेरे का क्या करना है फिर? मैं को क्या करना है और मेरे को क्या करना है? मैं आत्मा और मेरा एक वो, उसके सिवा मेरा कोई नहीं है और मैं भी केवल उसका हूं। मैं किसी व्यक्ति का भी नहीं हूं, दूसरा कोई व्यक्ति मेरा नहीं और मैं उनका भी नहीं हूं, हूं केवल एक का। इस संसार में उस मुरली में वरदान में था ना, भय ही भय है। भरतरी वैराग्य शतकम, बाबा भरतरी को बहुत याद करते हैं मुरलियों में, उसमें वैराग्य का शतकम लिखा है उसने, 100 verses, 100 lines वैराग्य के बारे में, 100 श्लोक, उसमें एक बहुत अच्छा है भय के बारे में। रूपे जराय भयम, जो रूपवान है उसको किसका भय है? बुढ़ापे का भय है। शास्त्रवादी भयम, जिसने बहुत शास्त्र पढ़े है उसको वाद विवाद का भय है, पता नहीं कोई कुछ बात बोल दे और हम थोड़ी सहन कर सकेंगे, हमने पढ़ा बहुत है, शास्त्रवादी भयम। गुणे खल भयम, जो बहुत गुणवान है उसको लगता है कि पता नहीं मेरी कोई निंदा ना कर ले उसकी। वृत्त नुपालक भयम, जो राजा होता है उसको भय रहता है कोई कोई चोर ना आ जाए। काया कृतांत भयम, ये जो काया है उसको मृत्यु का भय है। सर्व वस्तु भयान्वित, इस संसार में हर वस्तु में भय ही भय है, एक ही चीज है जिसमें भय नहीं है, वो कहता है वैराग्य। गृणा मेवा भयम, वैराग्य ही एक ऐसी एकमात्र चीज में जिसमें वैराग्य भय नहीं है। और बाबा क्या कह रहे हैं? मेरा बाबा यदि कर ला दो तो निर्भय बन जाएंगे। बाकी किसी को भी मेरा कहा और किसी ने भी हमको मेरा कहा, ना तो हम किसी को मेरा कहे ना तो दूसरा हमको मेरा कहे, ये दोनों ही माया है। एक अकेला चलना है इस पथ पर तो निर्भय। आगे लास्ट ग्रुप, ये लास्ट ग्रुप किसी और मुरली का है क्योंकि यहां पर युद्ध की बात है। बाबा मुरली में कहते हैं योद्धे नहीं बनो, दो मुद्राएं जो है, दो पोज है उसमें, और इसमें क्या कहा है? अननोन बट वेरी वेल नोन। अननोन क्यों कहा? वॉरियर्स कैसे हो तुम? अननोन हो क्यों? क्योंकि लक्ष्मी नारायण भाई अननोन क्यों हो? ध्रुव क्योंकि साधारण हो, चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते हो, परंतु फिर भी अंदर से क्या है? माया पर विजय पा रहे हो, इसके लिए अननोन हो, गुप्त हो। और वेरी वेल नोन कब होंगे? एक दिन प्रत्यक्ष हो जाओगे। क्या प्रत्यक्षता होगी? कौन थे, क्या थे, ऐसा हो जाएगा ना सब, और प्रत्यक्ष वो तब क्या हो जाएगा? वेरी वेल नोन। विजय के लिए क्या कहा? किसको साथी बनाओ? बाप सर्वशक्तिवान साथ है तो विजय निश्चित है। छोड़ना नहीं, माया के मेले में क्या बाप का हाथ नहीं छोड़ना, छोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, रास्ता भटक जाएंगे और चिल्लाएंगे। माया मुंह खोल कर बैठी हुई है, इसको भूलना मत। चाहे कितना भी दिन से कितना भी ज्ञान और योग कुछ भी कर रहे हो, थोड़ा भी चांस मिला तो माया ऐसी बैठी हुई है हप करने के लिए, सुरसा की तरह। हाँ, जैसे हनुमान जब जा रहा था तो सुरसा थी ना, तो वैसे माया ऐसी बैठी हुई है। हाँ बिकट रूप दी लंक जलावा। तो उसका साथ नहीं छोड़ना है संकल्पों से, उसको छोड़ा तो खो गए, उसको छोड़ा तो माया के मुंह में, उसको छोड़ा तो भटक गए, उसको छोड़ा तो आंतरिक खुशी गायब, उसको छोड़ा तो नीचे आ गए। ऊंची दीवार, कहा ना ऊंची दीवार से नीचे नहीं आना है, ऊंची स्थिति की है वो, नीचे नहीं आना है, नीचे आ गए तो गए खत्म। बाबा ने कभी अव्यक्त वाणी में कहा है कि अगर कोई पाप कर्म करता है तो दंड मिलेगा। कितना दंड मिलेगा? अज्ञान में एक का एक गुना, ज्ञान में आने के बाद एक का 100 गुना। ये दंड क्या है? धर्मराज बैठा हुआ है दंडा लेकर। स्थिति का गिर जाना ही दंड है। ज्ञान योग के मार्ग में स्थिति का गिर जाना ही दंड है। ज्ञान में रुचि कम हो जाना ही दंड है। खुशी का गुम हो जाना ही दंड है। अच्छा नहीं लगना कुछ, वही दंड है। ब्राह्मण परिवार से दूर जाना ही दंड है। यही दंड है, यही पनिशमेंट है। कुछ भी अच्छा नहीं लगना। योग अमृत वेला, उठने की इच्छा नहीं है। सेवा में दिल नहीं लगता है, मन नहीं लगता है, ऐसे लगता है बस सोए रहो। ये सब क्या है? दंड की निशानी है। ये अगर हो रहा है तो समझ लो जरूर कोई ना कोई विकर्म है जो हो रहा है, जो अब तक हमको नहीं दिख रहा है। इसके लिए दिव्य दर्पण में देखो मेरी मेरा पोज क्या है, कहाँ हूं। अगर जीवन में इस तरह की कोई भी बात है, इच्छा ही नहीं है कुछ करने की, कई ब्राह्मण हैं ऐसे आते हैं हमारे पास, कहते हैं कोई इच्छा नहीं, रात रात भर नींद नहीं आती, अमृत वेला मिस, बस देखते रहते हैं छत की तरफ दो दो तीन तीन बजे तक। क्या है ये दंड? दादियों से मुलाकात। क्या कहा बाबा ने? कौन सी महफिल देखी है? एक महफिल देखी, महावीर आत्माओं की महफिल, किन आत्माओं की महफिल, अनन्य आत्माओं की महफिल। और यहाँ पे बहुत अच्छी बात कही है, दो सेवाएं। कौन सी सेवाएं? एक स्थूल और एक सूक्ष्म। उदाहरण दिए बहुत सारे ब्रह्मा के, जैसे ब्रह्मा ने स्थापना में अपने संपूर्ण स्वरूप का साक्षात्कार कराया, वैसे ही क्या करते हैं बाबा भी वतन में इमर्ज करते हैं ऐसी आत्माओं को जो इष्ट और अष्ट है, उनको उनके द्वारा साक्षात्कार कराते हैं। एक ब्रह्मा का उदाहरण। दूसरा, जैसे ब्रह्मा ने स्थापना में वृद्धि की, वैसे इन आत्माओं के द्वारा भी शिव शक्ति का कंबाइंड स्वरूप का साक्षात्कार कराते हैं। और किस तन द्वारा? सूक्ष्म शरीर द्वारा साक्षात्कार भी कराते हैं और संदेश भी देते हैं दोनों। तो बाबा ने वहां पे पूछा है। तीसरा, साकार और आकार। एक है साकार ये शरीर, एक है आकार। आकार शरीर अर्थात सूक्ष्म शरीर, अर्थात एंजेलिक बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर, अंतवाहक शरीर। तो अंतवाहक के शरीर द्वारा सेवाओं की बात चल रही है। अंतवाहक शरीर से सेवा अर्थात किसी को साक्षात्कार कराना, किसी को संदेश देना, ये दो बातें बताई है वहां पर। तो बाबा ने कहा डबल सेवा करो। और जो स्थूल सेवा करते हो उसमें भी कैसे रहना है? डबल लाइट स्वरूप, कोई बंधन ना हो। कर्म किया पर कर्म का बंधन नहीं, डबल लाइट स्वरूप। प्रश्न पूछा कि कितना समय सूक्ष्म वतन में रहने का अनुभव है? सूक्ष्म वतन में रहते हो, लंबा लंबा समय सूक्ष्म वतन में रहना, योग की अवस्था में रहना, स्थूल कर्म करते हुए भी सूक्ष्म वतन में रहना। तो दो सेवा करनी है। और फिर बाबा ने पूछा कि क्या ज्यादा अच्छा लगता है, ये साकार शरीर से सेवा करना ज्यादा अच्छा लगता है, आकार सेवा से शरीर से सेवा करना अच्छा लगता है? तीसरा भी एक ग्रुप बताया, कौन सा? ये शरीर छोड़कर एडवांस पार्टी, उनकी भी सेवाएं बहुत जोर शोर से चालू है, नामी ग्रामी है, उसकी इतनी चर्चा नहीं की। तो यहां बाबा जो फोकस है वो है डबल सेवा के ऊपर, कि स्थूल सेवा तो कर ही रहे वो भी अनासक्त, उसमें भी डबल लाइट, परंतु जो सूक्ष्म सेवा है, सूक्ष्म वतन में जाकर। और बाबा ने तो कहा, एक भविष्यवाणी भी कर दी कि चाहो जो आप कितना भी बिजी हो, बाबा तो कराएगा ही, आपको वतन में इमर्ज कराएगा और आपके द्वारा साक्षात्कार कराएगा। दो ग्रुप्स बताए यहां पर, एक भक्त और दूसरा वैज्ञानिक। भक्तों में क्या करो, भक्ति के संस्कार भरने हैं, और वैज्ञानिक परिवर्तन और रिफाइंड साधन। वो कौन यूज करेगा? हम, वो नहीं। तो स्थूल सेवा और सूक्ष्म सेवा साथ साथ चालू रहे। लास्ट संडे की मुरली, पार्टियों से मुलाकात 1, क्या कहा था कि वो जो सेवा है वो गृहस्थी में रहने वाले भी 7 दिन का कोर्स करा सकते हैं। तुम्हारा काम है वायुमंडल को पावरफुल बनाना। कौन सा वायुमंडल? स्व का, केंद्र का, स्व का सेवा स्थान का, शहर का, भारत का। तब चढ़ती कला होगी, क्वालिटी क्वांटिटी वायुमंडल स्थाति स्वयं सबकी चढ़ती कला तब होगी। तो सार है मनसा सेवा का जो सब्जेक्ट है उसमें और ज्यादा काम करना। तो ये है दादियों से मुलाकात का सार। वरदान में क्या कहा बाबा ने? समझदार कौन है? जो हर शक्ति को कार्य में लगाए। कार्य में लगाएंगे ही तो वृद्धि होगी। और धनवान और समझदार, और क्या था उसमें? बजट बनाने के लिए कहा, ईश्वरीय बजट बनाओ, जो जमा भी हो और दूसरों के लिए यूज भी करो, क्योंकि दुखी और ये भिखारी आत्माएं, उनको भी तो मुक्ति देनी है। विशेष आत्मा कौन है? जो दूसरों की विशेषता को देखते। एक स्लोगन था गुणमूर्त, सबसे बड़ी सेवा कौन सी है? स्वयं गुणमूर्त बनकर दूसरों को गुणमूर्त बनाना। तीसरा, सबका स्नेह किसे प्राप्त होता है? जो स्नेही बनता है। माला माल कौन बनता है आज का स्लोगन? जो शुद्ध संकल्पों के खजानों से भरपूर है। और भी कुछ रह गया आज की मुरली से? तो बचत होगी। तो आज की सारी मुरली का सार है, ज्यादा से ज्यादा आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास, योग के चार्ट को बढ़ाना, और जो कुछ हुआ पास्ट उसको फुल स्टॉप, उसके बाद में ये जो दिव्य दर्पण है इसमें स्वयं को देखते रहना, स्वयं स्वयं को देखते रहना। तो फिर वो जो नेक्स्ट स्टेप है, दूसरों को क्या होगा वो होते रहेगा, उनको उनके तीनों काल का दर्शन होना। तो स्वयं स्वयं को देखना और चार्ट बढ़ाना। और फिर है जीवंत मृत्यु, जिसको कहा मर्जीवा जन्म। तो संसार, जो पुराना संसार छोड़ दिया है वो अब आकर्षित ना करे। एक बार जो छोड़ दिया वो छोड़ दिया। महान आत्माएं एक ही बार प्रतिज्ञा करती है, महान आत्माएं एक ही बार। हमारा एक मित्र था, उनकी माताजी जब भी कोई तीर्थ स्थान पे जाती थी, उनको जो भी चीज अच्छी लगती थी वो छोड़ देती थी, खाने की या कोई भी पहनने की। हर बार जो भी तीर्थ, हर साल एक तीर्थ में जाएगी और वहां जाकर एक चीज को छोड़ देती थी। तो महान आत्माएं एक बार जो छोड़ती है चीज, उसको वापिस स्वीकार नहीं करती। तो ऐसा इस संसार का जो हमने छोड़ दिया, अब फिर से उसको उसकी तरफ जाना नहीं है। फिर डबल सेवा, फिर माया सेवा में के प्रति हमारा समर्पण भाव, ऑलराउंडर सेवा करनी है, अपने आप को अमूल्य रतन समझना है, और मायाजीत बनने की जो बात कही, किला मजबूत, दीवार ऊंची, दरवाजा बंद, और बाप सर्वशक्तिमान साथ है, खजानों को सफल करना, और शुद्ध संकल्प के खजानों से स्वयं को भरना, तो माला माल बनेंगे। अच्छा, ओम शांति।